आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की जंग के दौरान रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की तैयारियों का जायज़ा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा है कि तिजारती इस्तेहकाम, तवानाई की यकीनी फराहमी, शहरियों के मफादात की हिफाजत और सप्लाई चेन का इस्तेहकाम हुकूमत की आला तरीन तरजीह हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत वाहिद मुल्क है जहां दुनिया के जोग्राफियाई और सियासी बहरान के बावजूद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ है। मगरबी एशिया में कशीदगी अब भी जारी है। इसराइल ने ईरान की अहम स्टील, बिजली और न्यूक्लियाई जगहों पर हमले किए हैं। ईरान ने कहा है कि ये हमले अमरीका की तरफ से सिफारती कोशिशों की आखिरी मुद्दत में तौसी देने की खिलाफवर्जी है। वज़ीर आज़म मोदी आज उत्तर प्रदेश के जेवर इलाके में नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। लद्दाख में जुजीला दर्रे के करीब बहुत सी गाड़ियों पर बर्फीली चट्टानें गिरने के हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। और 19वां IPL क्रिकेट आज शाम बेंगलुरु में शुरू होगा। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि इक्तसादी और तिजारती इस्तेहकाम को बरकरार रखना, तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाना, शहरियों के मफादात का तहफ्फुज करना और सनअत और सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाना मगरबी एशिया में कशीदगी के दौरान हुकूमत की आला तरजीहात हैं। जनाब मोदी ने यह बात कल शाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़राए आला और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के साथ आला सतह की वर्चुअल वसीले से मुनाक़िदा मीटिंग की सदारत करते हुए कही। यह मीटिंग मगरबी एशिया में जारी जंग और भारत पर इसके इम्कानी असरात के तनाजुर में मुल्क की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुनक़िद की गई थी। मीटिंग के दौरान वज़ीर आज़म ने मरकज और रियासतों के दरमियान चौकसी, पेशगी, मनसूबाबंदी और बिला रुकावट तआवुन की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुल्क पर किसी भी तरह के इम्कानी असरात से मौसर तौर पर निपटने के लिए टीम इंडिया के एक तालमेल वाले तरीक़ेकार के लिए कहा। रियासतों के अहम रोल को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने मरकज के साथ बिला रुकावट मवासलात और हकीकी सतह पर तेज़ी से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। जनाब मोदी ने रियासतों से यह भी जोर देकर कहा कि वो सप्लाई चेन की बिला रुकावट कारकर्दगी को यकीनी बनाएं और ज़खीरांदोज़ी, नीज मुनाफाखोरी की रोकथाम के लिए सख्त इकदाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि बैन वजारती ग्रुप की कारकर्दगी इस माह की 3 तारीख से शुरू की गई है, जिसके तहत रोज़ाना की सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और इसके मुताबिक बरवक्त फैसले किए जा रहे हैं। जनाब मोदी ने ज़िरात के शोबे, ख़ासतौर पर खरीफ की फसल से पहले कीमियावी खादों की भरपूर दस्तयाबी को यकीनी बनाने में पेशगी मनसूबाबंदी की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने गुमराह कुन मालूमात के खिलाफ खबरदार किया और रियासतों को मशवरा दिया कि वो दुरुस्त मालूमात फराहम करें ताकि ऑनलाइन घपलों की रोकथाम के लिए चौकस रहते हुए किसी तरह की दहशत को रोका जा सके। वज़ीर आज़म मोदी ने देरपा इस्तेहकाम पर जोर देते हुए रियासतों से जोर देकर कहा कि वो शमसी तवानाई, बायो ईंधन और इलेक्ट्रिक नकलो हमल जैसे तवानाई के मुतबादिल वसाइल इख्तियार करने और पाइप के जरिए कुदरती गैस पहुँचाने से मुतालिक बुनियादी ढांचे के अमल में तेज़ी लाएँ। उन्होंने तेल और गैस की घरेलू दरियाफ्त में इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसमें रियासतों का तआवुन शामिल रहे। वज़ीर-ए-आला ने इस सूरत हाल से निपटने के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए इकदामात को सराहा। उन्होंने इस बहरान के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों से वज़ीर आज़म की तरफ से सिफारती तौर पर राबता कायम करने के अमल को भी सराहा, ताकि बैरून मुल्क भारतीय शहरियों की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के सबब आलमी सतह पर रुकावटों के बावजूद भारत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा है और मुल्क ने इस बहरान से मौसर तौर पर निमटा है। कल शाम नई दिल्ली में प्राइवेट मीडिया की समिट से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पिछली दहाई में पेट्रोलियम के ज़खायर को मुस्तहकम और महफूज बनाने की हुकूमत की लगातार कोशिशों से सप्लाई में इस्तेहकाम की यकीन दहानी हुई है। जनाब शाह ने खासतौर पर कहा कि कई मुल्कों में ईंधन की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जबकि भारत में पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों पर तकरीबन कोई असर नहीं पड़ा और सप्लाई बरकरार रही।
यूरोप में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दामों में 20-30% की एवरेज बढ़ोतरी हुई है। यूके में 7-13% की हुई है, ऑस्ट्रेलिया में 18% की हुई है, अमेरिका में 17-34% की हुई है, वियतनाम में 50% की हुई है, पाकिस्तान में 17-20% की हुई है। भारत शायद एकमात्र ऐसा देश है पेट्रोल डीजल के दाम में 0 बढ़ोतरी के बाद हम सप्लाई करते हैं।
जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत ने तवानाई की यकीनी फरहमी में इजाफे के लिए तवील मुद्दती इकदाम किए हैं, जिनमें पेट्रोलियम के जख़ीरों में इजाफा और दरामदाती वसाइल में तनवो पैदा करना है। उन्होंने कहा कि भारत अब 42 मुल्कों से पेट्रोलियम मसनूआत दरामद करता है, जबकि 2014 में महज 27 मुल्कों से ये बरामदात की जाती थी, जिससे लगातार सप्लाई की यकीन दहानी होती है। उन्होंने ये बात भी खास तौर पर कही कि भारत की गैर मुल्की पॉलिसी में आलमी सतह पर अमन और तहम्मुल की वकालत करते हुए सभी मुल्कों के साथ मुतवाजन ताल्लुकात बरकरार रखने पर तवज्जो दी गई है। मगरबी एशिया में ईरान की अहम स्टील, बिजली और न्यूक्लियाई तनसीबात पर कल रात इसराइल ने अपने हमले तेज कर दिए, जिसके बाद जारी जंग में और शिद्दत आ गई है। ईरान ने हमलों की मजम्मत की है और कहा है कि ये सिफारती कोशिशों की अहमियत को कम करते हैं और मुज़ाकरात के लिए तौसीशुदा मुद्दत के बरखिलाफ हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने सोशल मीडिया पोस्ट में इंतबाह दिया कि ईरान के 2 अहम स्टील प्लांट्स और हसास न्यूक्लियाई मराकज समेत कलीदी बुनियादी ढांचे पर हमलों की इसराइल को भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान ने आबनाए हुरमुज के जरिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी में सहूलत देने और उसे तेज करने पर इत्तेफाक किया है, जो तेल की तरसील के लिए दुनिया के मसरूफ तरीन आबी रास्तों में से एक है। अक़वामे मुत्तहिदा में ईरानी सफीर अली बहरेनी ने जिनेवा में कहा कि तेहरान ने अक़वामे मुत्तहिदा की इस दरख्वास्त को कबूल कर लिया है, जिसमें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद और ज़रई तरसीलात को आबनाए हुरमुज से गुजरने देने के लिए कहा गया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इसके बाद जलसे से खिताब भी करेंगे। तफसील हमारे नामनिगार से।
नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे का इफ्तिताह भारत के आलमी हवाबाजी के हब बनने के सफर में अहम संगे मील साबित होगा। ये हवाई अड्डा कौमी राजधानी खित्ते के लिए बड़ा बैन-अल-अक़वामी गेटवे साबित होगा, जो मुल्क के हवाई अड्डे के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने और इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी कनेक्टिविटी बढ़ाने की नुमाइंदगी करता है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे IGI के बाद नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे को दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दूसरे बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे के तौर पर तैयार किया गया है। ये दोनों हवाई अड्डे मिलकर मरबूत हवाबाजी निज़ाम के तौर पर काम करेंगे, जिससे मुसाफिर सलाहियतों में इजाफा होगा, दबाव में कमी आएगी और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते के आलमी हवाबाजी हब बनने में मदद मिलेगी। नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डा मुल्क के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा प्रोजेक्टों में से एक है। नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डे का पहला मरहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 11,200 करोड़ रुपये की मजमूई सरमायाकारी से तैयार किया गया है। इब्तदा में ये हवाई अड्डा 12 मिलियन मुसाफिरों के सालाना बंदोबस्त की सलाहियत का हामिल होगा और पूरी तरह तैयार होने के बाद अपनी पूरी सलाहियत पर ये सालाना 70 मिलियन मुसाफिरों के काम आएगा। नोएडा बैन-अल-अक़वामी हवाई अड्डा 3,900 मीटर रनवे से लैस है, जिसे बड़ी जसामत के तैयारों और जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के लिए सभी मौसमों में 24 घंटे इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये हवाई अड्डा जामे कार्गो इको सिस्टम से भी लैस है और इसके लिए मल्टी मॉडल कार्गो हब और लॉजिस्टिक जोन तामीर किए गए हैं। जेवर गौतम बुद्ध नगर से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
इंतखाबी कमीशन ने मगरबी बंगाल के कुछ हिस्सों में तशद्दुद और बदमनी के हालिया वाकयात के बाद रियासत में पुलिस इंतजामिया की निगरानी में इजाफा कर दिया है। अगले महीने होने वाली असेंबली इंतखाबात से पहले सभी सतह के अफसरान को सख्त हिदायत जारी की गई हैं। चीफ इंतखाबी अफसर की हिदायत के मुताबिक सभी गैर जमानती वारंट्स तामील किए जाएंगे और फरार मुलजमीन को पकड़ने के लिए खसूसी कोशिशें की जाएंगी। मगरबी बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहलों के तहत वोट डाले जाएंगे। रियासत में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले का नोटिफिकेशन पीर को जारी किया जाएगा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि चुनाव फहरिस्तों में खसूसी तफसीली नजरसानी SIR का मकसद उन दरअंदाजों के नामों को हटाना है, जिन्हें जाली दस्तावेजात की बुनियाद पर चुनाव फहरिस्तों में शामिल कर लिया गया है। کل شام نئی دلی میں ایک پرائیویٹ میڈیا سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس کام کا مقصد چناؤ فہرستوں کی دیانتداری اور درستی کو یقینی بنانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس آئی آر کا عمل بہت سی ریاستوں میں انجام دیا گیا ہے، جن میں تمل ناڈو اور کیرلم بھی شامل ہے، البتہ وہاں کوئی بڑی تشویش ظاہر نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعتراضات ابتدائی طور پر مغربی بنگال سے ابھرے ہیں، جبکہ دیگر ریاستوں میں یہ عمل خوش اسلوبی سے تکمیل کو پہنچا۔
تین وپکش کے راجیوں میں ایس آئی آر ہو رہی ہیں، تمل ناڈو میں ہو گئی، دو کیرل میں ہو گئی، اور تیسرا بنگال میں ہو رہی ہیں۔ یہ دو راجیوں سے کوئی کمپلین نہیں آ رہی بھائی، اگر ایس آئی آر کی پرکریا میں ہی دوست جیسے انہوں نے آروپ لگایا ایسے ہم پارٹی ہوتے، الیکشن کمیشن ہمارے اشارے پر چلتا ہوگا تو کیرل میں کوئی کیوں کمپلین نہیں آئی ہے؟ ایک ہی جگہ کیوں کمپلین آ رہی ہے؟ اور ایک ہی جگہ کمپلین آ رہی ہے تو دوست ایس آئی آر کا نہیں ہے، وہ جگہ پہ جو ستا میں ہے ان کا ہے۔
آسام میں حکمرانی کا ذکر کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ حکومت نے پچھلے کچھ برسوں میں ریاست میں امن و استحکام کو یقینی بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 13 امن معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے تقریباً 11,000 افراد ہتھیار ڈال کر اصل دھارے میں شامل ہوئے ہیں، اور ان میں سے کئی لوگوں کو روزگار کے موقع فراہم کر کے ان کی بازیابت کاری کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن کی بحالی اور ترقی کے لیے لگاتار کوششوں کی وجہ سے آسام میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے، اور اس ریاست کی ترقی دیگر ترقی یافتہ ریاستوں کے قریب آ گئی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر اور لداخ کو جوڑنے والی قومی شاہراہ پر واقع زوجیلا پاس سے گزرنے والی گاڑیوں پر برفانی تودے گرنے سے 7 لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے فوراً بعد بچاؤ کارروائی شروع کر دی گئی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں مرکزی وزیر جتیندر سنگھ نے اس حادثے میں 7 لوگوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اس حادثے پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ زخمیوں کو تمام ضروری امداد دی جا رہی ہے۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر ونے کمار سکسینہ نے بھی اس المناک حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ نیپال کے سابق وزیر اعظم کے پی شرما اولی کو آج صبح گرفتار کر لیا گیا۔ انہیں گزشتہ سال ہوئے جین زی مظاہروں میں ان کی مبینہ شمولیت کی بنا پر گرفتار کیا گیا ہے۔ بالیندر شاہ کی جانب سے نیپال کے سب سے کم عمر وزیر اعظم کے طور پر حلف لینے کے ایک دن بعد کے پی شرما اولی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 19ویں انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل کا آج شام بنگلورو میں آغاز ہوگا۔ پہلا میچ ایم چنسوامی اسٹیڈیم میں دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق آج شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ 2 ماہ طویل ٹورنامنٹ 31 مئی کو اختتام پذیر ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو اپنے پہلے صفحے کی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے، ملک میں لاک ڈاؤن نہیں لگے گا، حکومت کی یقین دہانی۔ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی شہ سرخی ہے، پیٹرول اور ڈیزل پر اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کٹوتی۔ مغربی ایشیا کے بحران پر وزیر اعظم نریندر مودی کی وزرائے اعلیٰ کے ساتھ میٹنگ، تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس خبر کو انقلاب کے علاوہ دیگر اخبارات نے اپنے صفحے اول پر پیش کیا ہے۔ بالیندر شاہ کی نیپال کے وزیر اعظم کے طور پر حلف برداری سے متعلق خبر کو ہندوستان ایکسپریس کے علاوہ دیگر اخبارات نے بھی پہلے صفحے پر شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے سری نگر لے ہائی وے پر برفانی تودے گرنے سے کئی افراد کے ہلاک ہونے کی خبر کو پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کی جنگ کے دوران ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ تجارتی استحکام، توانائی کی یقینی فراہمی، شہریوں کی مفادات کی حفاظت اور سپلائی چین کا استحکام حکومت کی اعلیٰ ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت واحد ملک ہے جہاں دنیا کی جغرافیائی اور سیاسی بحران کے باوجود پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ مغربی ایشیا میں کشیدگی اب بھی جاری ہے۔ اسرائیل نے ایران کی اہم سٹیل، بجلی اور نیوکلیائی جگہوں پر حملے کیے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ یہ حملے امریکہ کی طرف سے سفارتی کوششوں کی آخری مدت میں توسیع دینے کی خلاف ورزی ہیں۔ وزیراعظم مودی آج اتر پردیش کے جیور علاقے میں نوئیڈا بین الاقوامی ہوائی اڈے کے پہلے مرحلے کا افتتاح کریں گے۔ لداخ میں زوجیلا درے کے قریب بہت سی گاڑیوں پر برفیلی چٹانیں گرنے کے حادثے میں 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور 19ویں آئی پی ایل کرکٹ آج شام بنگلورو میں شروع ہوگا۔ پہلا میچ رائل چیلنجرز بنگلورو اور سن رائزرز حیدرآباد کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔